मुक्षुमार्गस्यनेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि या तत्वार्थ सूत्र और रत्नकंठ शौकाचार्य लगभग समानांतर चल रहे हैं अपने। यहाँ संलेखना का वर्णन पूर्ण हुआ है, वहां संलेखना का प्रारंभ हो रहा है। अब अतिचारों का वर्णन है। अत्राह यहाँ कोई कहते हैं निश्शल्यो व्रती इत्युक्तम्। व्रति निश्शल्य होता है, माया मिथ्या निदान शल्यों से रहित होता है। तत्र किम तृतीयम शल्यम मिथ्या दर्शनम। फिर उसमें तीसरी जो माया मिथ्या और निदान, यहाँ पर माया निदान मिथ्या तृतीय शल्य मिथ्या दर्शन शल्य तथा सम्यक दृष्टिना व्रतिना निश्शल्येन भवितव्यम इत्युक्तम। इसलिए सम्यक दृष्टि व्रति को निश्शल्य होना चाहिए ये कहा था। तत्सम्यक दर्शनम किम सापवादम, तत्सम्यक दर्शनम किम सापवादम। क्या वह सम्यक दर्शन भी अपवाद से युक्त होता है, उसमें भी दोष हो सकते हैं क्या? निरपवादम इति अथवा निर्दोष ही रहता है सम्यक दर्शन। उच्यते कहा जाता है कस्यचिन मोहनीयावस्था विशेषात, किसी जीव के लिए मोहनीय की अवस्था विशेष के कारण यानी सम्यक प्रकृति का उदय होने के कारण कदाचित कभी इमे भवन्त्यपवादा, हाँ ये दोष आ जाते हैं सम्यक दर्शन में। सम्यक दृष्टि है, नष्ट नहीं हुआ सम्यक दर्शन, लेकिन दर्शन मोहनी के उदय से ये दोष आ रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि है और दर्शन मोहनी का उदय है तो कौन सा दर्शन मोहनी होगा? दर्शन मोहनी के तीन भेद है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन तो रह जाता है लेकिन दोष लगते हैं। शंका आकांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टे रतिचारा। निशंकित आदि अंगों का व्याख्यान किया जा चुका था। तत् प्रतिपक्ष भूता शंका देव, उनसे विपरीत ये है दोष। फिर बोले अथ प्रशंसा संस्तवायो हो को विशेष, प्रशंसा और संस्तव में क्या अंतर है? मनसा मिथ्या दृष्टि ज्ञान चरित्र गुणोद्भावनम प्रशंसा। मन ही मन मिथ्या दृष्टियों के अथवा मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान दर्शन ये ज्ञान चरित्र गुणों का उनकी सराहना करना प्रशंसा है। और भूता भूत गुणोद्भावन वचनम संस्तव, और वचनों में उसको बताना वो संस्तव है यानी प्रशंसा को यहाँ पर वाचनिक नहीं ले रहे हैं, मानसिक ले रहे हैं और वाचनिक जो है उसको संस्तव में ले रहे हैं, है दोनों एक ही वस्तु। अब वचन में संस्तव होता है लेकिन वचनों में भी प्रशंसा क्यों कहते हैं? तो कार्य में कारण का उपचार करके कहते हैं। संस्तव का कारण प्रशंसा है जो मन में आई है और उसका प्रशंसा का कार्य संस्तव है, इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके कहते हैं। ये सारे शास्त्रीय शब्द है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभ्यास हो जाने के बाद में ये सुगम हो जाते हैं। शुरू शुरू में सुनते समय चेहरे ऐसे डरावने लगते हैं श्रोताओं के, वो ठीक है, कोई बात नहीं। न अनुच, अब शंका है। सम्यक दर्शन अष्टांग मुक्तम तस्याचारप्यष्टभिर् भवितव्यम। सम्यक दर्शन आठ अंगों वाला बताया था, और अतिचार में आपने तीन को कहाँ अलग कर दिया, पांच कैसे कर दिया अतिचार, जब सम्यक दर्शन आठ अंगों से युक्त है तो आठ अंगों में दोष लगेंगे तो आठ अतिचार हो जाएंगे, तो आपने कैसे अलग किए। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैष दोष है, ऐसा दोष नहीं है। व्रतशीलेषु पंच पंचातिचार इत्युत्तरत्र विवक्षुणा आचार्येण। आगे चल करके व्रत और शीलों में पांच पांच अतिचार बताने के इच्छुक जो आचार्य हैं, उन्होंने प्रशंसा संस्तवयो ऋतरान अतिचारान अंतर्भाव्य पंचैव अतिचारा उक्ता। प्रशंसा और संस्तव में बाकी अतिचारों को गर्भित करके पांच अतिचार बतला दिए हैं, पांच ही अतिचार बताए हैं। इन प्रशंसा और संस्तव में बाकी जितने भी दोष हैं सम्यक दर्शन के, वो उसमें आ जाएंगे। क्या ये पांच अतिचार व्रतशीलों में भी होते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि ओम होते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रम, व्रत और शीलों में क्रमशः पांच पांच अतिचार होते हैं। अभी अगारी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अगारियों के व्रत शीलों के पांच पांच अतिचार बतला रहे हैं। अहिंसा व्रत के पांच अतिचार, बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, इष्ट स्थान पर न जाने देना बंध अतिचार है। फिर पीट पीटना जानवरों को या किसी को, वो वध अतिचार है। वध का अर्थ यहां पर घात करना या फिर उसके प्राणों का हनन करना नहीं है, यहां पर प्राणों का हरण करना नहीं है, यहां पर मारपीट करना है वध। वध छेद का अर्थ होता है काटना, जैसे जानवरों के कान या पूंछ वगैरह काट देते हैं ना पहचान बनाने के लिए, तो वो अतिचार है। उन्हें कान नाक आदि अवयवों का अपनयन करना, काट के अलग करना, वो छेद नाम का अतिचार है। फिर न्यायीय भारा दतिरिक्त वाहनम अति भारारोपणम, उचित भार से अधिक भार उन पर लादना अति भारारोपण है। फिर गवादीनाम क्षुत पिपासा बाधा करण अन्नपान मन्नपान निरोध, गाय आदि के बैल वगैरह जो हैं उनकी भूख प्यास की बाधा उत्पन्न करना, उनको समय पर भोजन नहीं देना, ये अन्नपान निरोध नाम का अतिचार। ऐसे इंसान व्रत के पांच अतिचार। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यानकूट लेखक क्रिया नासापहार साकार मंत्र भेद। मिथ्योपदेश अभ्युदय निःश्रेय सार्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनम अति संधापनम वा मिथ्योपदेशः। अभ्युदय यानी सांसारिक वैभव, और निःश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष जिनका फल है, ऐसी क्रिया विशेषों में अन्यस्य किसी दूसरे को अन्यथा प्रवर्तनम, अन्य रूप से प्रवृत्त कराना, अथवा अतिसंधापनम वा छल पूर्ण वचन बोलना, वो मिथ्योपदेश है। अब यहां पर स्वर्ग मोक्ष संबंधी जो क्रिया है उसमें किसी को अन्यथा प्रवृत्ति कराने के लिए उसको आगम से विरुद्ध बोलना पड़ेगा, पर ये अतिचार तब लगेगा जब उसको आगम का ज्ञान न हो। आगम का ज्ञान होने पर भी अगर वो गलत प्रवृत्ति कराएगा तो फिर उसको मिथ्यात्व का ही दोष आएगा। तो अज्ञान जनित अतिचार है मिथ्योपदेश। फिर रहो व्याख्यान का अर्थ होता है स्त्री पुरुषों के माध्यम से एकांत में कोई प्रवृत्ति हो हुई हो तो उसको प्रकट कर देना, सबके सामने रहस्य खोल देना, वो अतिचार है उसका। फिर अन्य अनुक्तम अनुष्ठितम मन अनुष्ठितम यत किंचित पर प्रयोग वशाद एवं तेन उक्तम अनुष्ठितम इति वंचना निमित्तम लेखनम कूट लेखक क्रिया। जो किसी दूसरे ने किया नहीं है, जो किसी दूसरे ने कहा नहीं है, पर किसी के कहने से आप उसके खिलाफ वैसी वैसी बातें करने लग जाते हो, झूठी गवाही वगैरह देने लग जाते हो, या फिर झूठे आलेख तैयार करते हो, तो वो कूट लेखक क्रिया है, वो भी दोष है सत्यव्रत का। फिर सोने आदि जो द्रव्य होते हैं स्वर्ण वगैरह, वो कोई आपके पास रख करके चला जाए और फिर लौटते समय वो संख्या भूल जाता है, और वो कुछ कम मांगता है, तो आप खुशी से उसको लौटा देते हो और ये सुकून मनाते हो कि अच्छा वो भूल गया, हूँ थोड़ा तो अपने को फायदा हुआ। अर्थ प्रकरणांग विकार भू विक्षेप आदि भी पराकूतम उपलब्ध प्रयोजनवश या प्रकरण के कारण या शरीर की विकृतियों के कारण चेष्टाओं के कारण किसी की हरकतों के माध्यम से उसके दिल की बात का अनुमान लगाकर उसको दूसरों के सामने बता देना कि भाई वो ऐसा ऐसा चल रहा है वहां पर कुछ षड्यंत्र, तो ये भी एक अतिचार है। साकार मंत्र भेद इसके बाद अचौर्य के अतिचार बताते हैं। स्तेन प्रयोग तदा हृता दान किसको
से हुआ कि से उनके उसे दर्द नहीं हुआ, कोई अगर पापों से नहीं, इस तरह सुना है।
किससे झूठ बोला?
धर्मराय से, अश्वत्थामा।
अच्छा वो नहीं, उसके कारण तो वो माया का वो आ गया था उसमें, लेकिन ऐसा इसमें नहीं आया, अपने जैन शास्त्रों में इस कारण से नहीं बताया, दूसरा कारण है। स्तीन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्धराज्याधिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। चोरी का त्याग कर दिया लेकिन दूसरों से चोरी करवा लेते हैं, तदा हृता दान, चुराई हुई वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, फिर विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजकीय कानून का अतिक्रमण करते हैं, फिर हीनाधिक मानोन्मान, नाप तौल में कुछ कम ज्यादा करते हैं, फिर प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावटी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। तो ये 5 दोष लगते हैं। ब्रह्मचर्य के 5 दोष, पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहिता परिगृहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेश। पर विवाह करण, जिसका अपने परिवार से कुटुंब से कोई लेना देना नहीं है, उसके भी संबंधों को जोड़ना, विवाह के संबंधों को, तो ब्रह्मचर्य व्रति के लिए दोष है, शादी ब्याह के संबंध वो न जोड़े। फिर इत्वरिका परिगृहिता अपरिगृहिता, जो जिसके चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसी स्त्री को इत्वरी कहते हैं। तो वो इत्वरिका जो होती है, वो चाहे परिगृहित हो या अपरिगृहित हो, यानी विवाहित हो या अविवाहित हो, उसकी गमन यानी उससे लेन देन का व्यवहार रखना, उससे मिलना जुलना, उसके पास आना जाना, अपना व्रत खंडित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे संपर्क रखने से उसमें दोष आता है उन्हें। फिर अनंग क्रीड़ा यानी अप्राकृतिक रूप से अब्रह्म में प्रवृत्ति करना, फिर काम तीव्राभिनिवेश, और अपनी सीमा में इसके प्रति तीव्र अभिनिवेश रखना, तीव्र अभिप्राय रखना, आसक्ति ज्यादा रखना, वो भी एक अतिचार है। परिग्रह परिमाण के अतिचार बतलाते हैं, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण आते क्रमा। खेत है, क्षेत्र का अर्थ खेत नहीं है, क्षेत्र का अर्थ यहां पर भूमि है, भूमि खंड को क्षेत्र कहते हैं, यानी किसी की जमीन। वास्तु का अर्थ भवन है, मकान दुकान वो सब। हिरण्य का अर्थ चांदी है, सुवर्ण का अर्थ सोना है, धन का अर्थ पशुधन गोधन वगैरह को धन में ले रहे हैं, और धान्य में अनाज, फिर दासी और दास, नौकरानी और नौकर, कुप्य, कुप्य में वस्त्र बर्तन आदि आएंगे। अब 5 व्रतों के ये अतिचार हो गए, 5 सम्यक के अतिचार थे, 5 व्रतों के अतिचार हो गए, हर व्रत के 5-5 अतिचार हुए, 30 अतिचार हो गए। अब शीलों के अतिचार बतला दें, दिग्व्रत के 5 अतिचार, ऊर्ध्वा दस्तात तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्ध स्मृत्यंतरा धानानी, ऊपर अधस्तात यानी नीचे, तिर्यक यानी ऐसे तिरछे, जो सीमा बनाई थी उसका उल्लंघन करना, क्षेत्र वृद्धि अथवा सीमा में जो क्षेत्र था उसमें वृद्धि कर लेना, देखा कि इस तरफ पूर्व दिशा में ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर पश्चिम की सीमा बनाई थी ना समुद्र तक, तो वहां से थोड़ी कम कर दी पश्चिम से, यानी समुद्र से 10 किलोमीटर इधर कर दी और इस तरफ 10 किलोमीटर बढ़ा दी प्रॉफिट को देख के। तो ये अपने को ऐसे हंसी आती है, पर जिस जीव को कषाय का उदय आता है लोभ का, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता ही है। तो ये कर्म की चाबी से भरा हुआ ये खिलौना, संसारी रूपी खिलौना, वैसे वैसे खेल करता रहता है। अब एक सीमा बनाई थी पहाड़ की कि भाई शिखर जी और फिर जो भी अपने तीर्थ क्षेत्र है उतने अंतिम सीमा रखेंगे, पर पता चला कि किसी दूसरे पहाड़ पर जहाँ पर कोई क्षेत्र वगैरह नहीं है उसकी हाइट भले शिखर जी से ज़्यादा है लेकिन ऊपर कोई किसी का माल रखा हुआ है, बहुत पुराने 300 साल पुराना कोई खजाना रखा हुआ है, और फिर वहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई चला जाए और उसको मिल जाए तो कुछ परसेंट उसको मिल जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया ऐसा कुछ भी, तो फिर वो लोभवश हाइट का उल्लंघन कर जाता है तो वो ऊर्ध्व दिशा का अतिक्रमण कहलाता है। वैसे अधो दिशा का भी हो सकता है, कोई खदान है हीरे की या पन्ने की या किसी वस्तु की सोने की, तो उसमें ज़्यादा गहरे पता चला कि अभी 10 फुट और नीचे कुछ है, मतलब संभावना है, तो फिर वो ऊपर की सीमा कम कर लेता है थोड़ी और इधर नीचे बढ़ा लेता है। होता है कषायों के कारण, पर आचार्य कह रहे हैं कि ये व्रतों को निर्दोष रखने के लिए इनका त्याग करना है। शील व्रतेश अनतिचारो, क्या बात है, मतलब तीर्थंकर जो होते हैं पूर्व भव में शील और व्रतों को बिल्कुल अतिचार रहित रखते हैं। एक भी 70 अतिचार बता रहे हैं इसमें, 70 में से एक भी अतिचार जिनको नहीं लगता वो तीर्थंकर बनते हैं। कोई बहुत बड़ी बात है तीर्थंकर बनना, तो अपन जितना पढ़ते जा रहे हैं शास्त्रों को उतना लगता है कि तीर्थंकर बनना बहुत भारी काम है, और कभी कभी कुछ लोगों को पता चल जाता है कि हम तो नहीं बन पाएंगे तीर्थंकर कभी किसी जन्म में, तो फिर वो इसी जन्म में बनने की कोशिश करते। ठीक है, अभी ये विषयांतर हो जाएगा। फिर स्मृति अंतराधान, जो सीमा रखी थी वो भूल गए, भूलने से भी मुश्किल हो जाती है, यानी गंगा नदी की सीमा थी या यमुना की थी वो याद नहीं रख पाया जितना उसने। कोई बड़ी प्रसिद्ध स्थान की सीमा बनाई जाती है तो अब वहाँ कहीं आसपास दो प्रसिद्ध स्थान है तो अब कौन से स्थान की सीमा बनाई थी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तब दोष लगता है। अब देश व्रत के अतिचार आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। अब सीमा के बाहर जा तो नहीं सकते तो आनयन वहां बाहर की वस्तु को अंदर बुलवा लेना, अथवा प्रेष्य प्रयोग किसी को भेज देना। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि अपना काम, अपने को कोई चीज आवश्यक है तो अपन बाहर से बुलवा रहे हैं, ये आनयन नाम का अतिचार है, और प्रेष्य प्रयोग का अर्थ होता है बाहर कुछ काम करवाना है तो किसी को भेज करके करवा लेते हैं। फिर शब्द यानी अपनी ध्वनि के माध्यम से भी वो सब हो जाता है काम। रूपानुपात अथवा अपना रूप दिखा करके भी हो जाता है, वीडियो कॉल करके, शब्द यानी ऑडियो कॉल हो गया, रूपानुपात यानी वीडियो कॉल हो गया आज के जमाने में। और पुद्गल क्षेपा, पुद्गल को बाहर क्षिप्त करते हैं, डालते हैं, तो उससे भी काम होते हैं कई प्रकार के। पुद्गलक शेप में लेटर्स वगैरह हैं, अथवा मिट्टी के ढेले वगैरह हैं, और भी अन्य कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, उनको बाहर छोड़ते हैं तो फिर हो जाता है। अनर्थ दंड त्याग का, पांच प्रकार के अनर्थ दंडों का जिसमें त्याग होता है, ऐसे अनर्थ दंड विरति व्रत में पांच अतिचार बतलाते हैं। कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरण भोग, कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी। राग के उद्रेक के कारण हंसी मजाक में कुछ भद्दी हंसी मजाक कर देना, अशिष्ट माने जो शालील लोग जैसे मजाक नहीं करते वैसे मजाक करना, कंदर्प नाम का अतिचार है। तदेव उभयम् परत्र दुष्ट काय कर्म प्रयुक्तम कौतुकुच्छम, और उसी प्रकार राग द्वेष के उद्रेक से हंसी मजाक के साथ अशिष्ट वचनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, हंसी मजाक अशिष्ट वचन और साथ में शरीर की भी ऐसी हल मतलब भद्दी चेष्टाएं कर रहे हैं। तो वो भी एक अतिचार है। फिर धार्ष्ट्यप्रायम यत् किंचनानर्थकम बहुप्रलापित्वम मौखर्यम, दृष्टता की जिसमें अधिकता है ऐसा कुछ भी निरर्थक बहुप्रलाप करते रहना, यानी खूब ज्यादा बकबक करना, दृष्टता पूर्वक खूब ज्यादा बोलना, वो भी अतिचार। असमीक्ष्य प्रयोजन माधिक्येन करणम, उद्देश्य की समीक्षा न करके अर्थात उस पर विचार न करके, आधिक्येन करणम ज्यादा ही कर देना कुछ, वो असमीक्ष अधिकरणम है। जैसे आपको तीन रोटी खानी है पर आपने पांच रोटी रखवा ली थाली में, फिर बाद में जब पेट भरने लगा तब लगा कि अब ये तो आफत हो गई क्या करें, तो वो उतना वेस्टेज होगा, बर्बाद होगी, तो वो असमीक्षाधिकरण। फिर यावत तार्थेनोपभोग परिभोगो सोर्थस ततोन्यस्याधिक्य मानर्थक्यम, जितने धन से उपभोग और परिभोग आ जाते हैं उतना तो काम का है, लेकिन उससे अधिक जो होता है वो यहां धन को न लेकर प्रयोजन को लेना होगा। उपभोग परिभोग के लिए जितनी वस्तु आवश्यक है वह तो प्रयोजन भूत है, और उससे अतिरिक्त वस्तु रखना उपभोग परिभोगा नर्थक्य नाम का अतिचार है। अब सामायिक शिक्षा व्रतों के अतिचार है। सामायिक के अतिचार क्या है? योग दुष्प्रणिधानान्यद रो योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति करना सामायिक के काल में। अब वहां तो मन में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने के लिए बताया है सामायिक में, अथवा परमेष्ठियों का चिंतन करने को कहा है। अब आप सामायिक के समय और कुछ गुणा भाग करने लग जाओ मन से, सामायिक के समय ऐसा लग आप मतलब बैठे सामायिक में फिर आपको लगा कि अभी बैठना ही है, 48 मिनट तो बैठना ही है, तो चलो कुछ दिमाग से कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा। और फिर आप ये हिसाब लगाने लग गए कि किसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो 5-6 नाम आपको याद आ गए, तो फिर आप सामायिक में अच्छी तरह से उन 5-6 नामों को वो कर लेते हैं, बाद में उठ करके वो नाम लिख लेते हैं। तो ये आपने जो मन में किया है सामायिक के समय हिसाब, वो दुष्प्रणिधान है। फिर वचन दुष्प्रणिधान क्या है कि वचनों से दुष्प्रवृत्ति करना सामायिक के समय, वचन संबंधी दुष्प्रवृत्ति करना। जैसे कोई सामायिक के समय कोई आ जाए 5-10 मिनट बाद, समय आपने शुरू कर दी थी, 5-10 मिनट हो चुके थे सामायिक, फिर आ गया कोई, तो आपको लगता है कि अब बड़े दिनों बाद आया है ये, तो बात कर ही लेते हैं, बाद में अपन फिर सामायिक फिर से बैठ लेंगे, तो उससे बातचीत करने लग गए, या वचनों से और कुछ करने लग गए आप। सामायिक के समय हास्य कविता तैयार करने लग गए, पर वो मानसिक हो जाएगा। वचन संबंधी और भी जो भी प्रवृत्तियां हो जाएंगी, दुष्प्रवृत्तियां, वो अतिचार के अंतर्गत आएंगी। फिर काय दुष्प्रणिधान में शारीरिक चेष्टाएं उस प्रकार की करने लग गए, सामायिक के समय अंगड़ाई ले ली, उंगलियां चटकाने लग गए, और फिर और भी अनेक अनेक तरह की काय चेष्टाएं करने लग गए, काय दुष्प्रणिधान हो जाए। माने कुल मिलाकर मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियां 3 अतिचार है। फिर अनादर का अर्थ होता है उत्साह ना होना, वो भी अतिचार है। और अंतिम है स्मृत्यनुपस्थानानी, अब याद नहीं आ रहा है सामायिक में अब और क्या क्या करने का है मेरे को, सामायिक में जो किया जाता है वो भूल जाना। तो ये सामायिक के 5 अतिचार है। प्रोषित उपवास के 5 अतिचार बता रहे हैं, उपवास के दिन होते हैं अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित उत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानी। अप्रत्यवेक्षित का अर्थ होता है बिना देखे, अप्रमार्जित का अर्थ होता है बिना प्रमार्जन अर्थात शोधन किए। तो बिना देखे शोधे उत्सर्ग यानी मलमूत्र का विसर्जन करना, बिना देखे शोधे आदान यानी कोई वस्तु ग्रहण करना, बिना देखे शोधे संस्तर उपक्रमण यानी चटाई वगैरह बिछाना, बिना देखे शोधे। उपवास के दिन शरीर में थोड़ा ढीलापन आ जाता है ना, तो फिर ये अतिचार लगते हैं बोले। और आचार्य महाराज इसमें दृष्टांत भी देंगे। अनादर, उत्साह पूर्वक उपवास वगैरह नहीं करना। फिर स्मृत्य अनुपस्थान, जैसे सामायिक में थे वैसे भूल जाना कि उपवास में मुझे क्या क्या करना था। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि पर मलमूत्र का विसर्जन करना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग है। उत्सर्ग का अर्थ विसर्जन होता है। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित अर्हद आचार्य पूजोपकरण से गंध माल्य धूपादेह आत्म परिधानाद्यर्थ से च वस्त्रादेह आदानम अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित आदानम। बिना देखे शोधे जिनेन्द्र भगवान और आचार्य आदि जो पूज्य जन है उनकी पूजा के जो उपकरण है यानी पूजा के जो साधन है, क्या 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 है, नाम बता रहे हैं। गंध माल्य धूपादेह, गंध का अर्थ क्या होता है, चंदन वगैरह। अब चंदन की जो प्रक्रिया होती है, वो चंदन हमेशा उपलेपन के ही रूप में होता है पूजा के अंदर। चंदन अभिषेक के लिए भी होता है, वो तो एक अलग विषय हो गया, वो पूजा के प्रारंभ में अभिषेक किया जाता है। लेकिन पूजा में जो अष्टक दिया जाता है, अष्ट द्रव्य होते हैं, उसमें जो चंदन है, जो गंध है, वो गंध लेपन रूप होती है। चंदन लगाया जाता है, तो उसको पानी में घोल करके एक पात्र से दूसरे पात्र में नहीं डाला जाता चंदन, शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार चंदन जो होता है वो लगाया जाता है, चरणों में लगाया जाता है। चंदन चर्चन लिखा हुआ है शास्त्र में, चर्चन का अर्थ क्या होता है, चरणों में लगाना होता है, तो चंदन को चरणों में लगाया जाता है। फिर अब जिनके यहाँ ये नहीं चलता, वो किसी मूर्ति में चंदन लगा हुआ देख करके अलग अलग तरह से भी कल्पनाएं करने लग जाते हैं कि ये क्या करके रख दिया इन लोगों ने। और कभी कभी वो आगम को न जानने के कारण उपहास भी करते हैं, कभी कभी कटाक्ष भी करते हैं, बोले कि यहाँ के लोग तो भगवान को नेल पॉलिश लगाते हैं। तो नेल पॉलिश नहीं लगाते, वो चंदन लगा रहता है, पर इस तरह से वो कड़वे शब्द बोल करके उनको अपनी कषाय को हल्का करने के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अज्ञानी लोग लगाते हैं, मूर्ति अपूज्य नहीं होती, मूर्ति तो पूज्य रहती है, लेकिन अज्ञानी लोग लगाते हैं तो क्या करोगे, लगाते हैं, मूर्ति को तो नमस्कार करना चाहिए। पर बात यह है कि जिसको आप अज्ञानी कह रहे हैं, यदि वो उसकी क्रिया शास्त्र में आई है और उस शास्त्रीय क्रिया का आपको ज्ञान नहीं है, तो कौन अज्ञानी है? ज्ञानी को अज्ञानी कहने वाला अज्ञानी होता है। पर कोई बात नहीं, अपन अपने अज्ञान को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई अपने को अज्ञानी कहे तो बुरा मानने की बात नहीं है, पर अगर वो असत्य बोले तो फिर उसको इतना जानकारी दे सकते हैं कि जिसको आप अज्ञान कह रहे हैं उसका ज्ञान आपको नहीं है। आप अगर शास्त्र देख लें तो शास्त्र में देख लीजिए क्या लिखा है, या फिर आप जो बताना चाह रहे हैं वो शास्त्र में बता दीजिए, क्योंकि आपके कथन को केवल आपकी मुद्रा के कारण हम मान्य नहीं कर सकते। यहां पर ये जिन शासन आगम से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता है। एक व्यक्ति का अलग विचार है एक ही क्रिया को लेकर, दूसरे का अलग विचार है, तीसरे का अलग विचार है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आगम के अनुसार क्रिया करने वाले हैं वो शताब्दियों से वही क्रिया कर रहे हैं, और जो चिंतन और तर्क के अनुसार क्रिया करने वाले हैं उनकी क्रियाएं हर 10 साल में बदल जाती है। बदलते रहती उनकी क्रियाएं, क्या मतलब है? या तो आगम को मान लो और अपने आप को सही जैन कहो, यार अगर आगम को नहीं मानना है तो फिर ये दावा मत करो कि हम जैन शासन के अनुसार चल रहे हैं। तो यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने साफ लिखा है कि गंध माल्य, अब माला क्या होती है, माला पुष्प माला होती है ना, जहां पुष्पमाला नहीं चलती वहां उन लोगों को देखकर बहुत अजीब सा लगता है, ये क्या यहाँ पर मालाएं लगा दी जैन मंदिर में, ये तो अजैनों के यहाँ चलता है ऐसा। लेकिन उनको पता नहीं है कि आचार्यों ने क्या लिखा शास्त्रों में। ये अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी वो आचार्यों के वचन है, यहाँ पर कुछ भी अतिरिक्त नहीं बताया जा रहा। ये आचार्य महाराज ने लिखा गंध माल्य, गंध की बात हो गई, फिर माल्य की बात आई। माल्य का अर्थ माला होता है, माला किसकी माला? वो जो लकड़ियों से भी बनती है ना माला है। नहीं, लकड़ियों को छील कर, चंदन वगैरह की लकड़ियों को छील करके वो माला बनाते हैं। और फिर बीजों की भी माला होती है, रुद्राक्ष की भी माला होती है, और माला फेरने वाली भी माला होती है। वो फेरने वाली माला पूजा का उपकरण नहीं, वो जाप्य का उपकरण है। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिस माला की बात कर रहे हैं, उसको आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दिव्यण पुष्पेण लिखा है, पुष्प के रूप में बताया उन्होंने। और पुष्प जो होते हैं ऐसे खुले न चढ़ाकर माला के रूप में भव्यता के साथ चढ़ाए जा सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। गले में डालते हैं या फिर ऐसे अलग से पहना, जैसे हमने वहां पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का देखा था, वो काफी डिस्टेंस पर थी वो माला। नहीं, पर वो क्या था कि उसका अभिप्राय क्या है वो समझना है। उसको जय माला कहते हैं। जय माला का अर्थ होता है, एक जय माला तो वो है जो स्तुति की जाती है बाद में, पूजा करने के बाद जो भगवान की स्तुति होती है वो जय माला है। फिर ये जो फूल माला होती है, ये माला विजय माला होती है। जैसे चक्रवर्ती जब छठखंड पर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी में प्रवेश करता है, तब उसको विजय माला पहनाई जाती है। अब वो माला जो है कोई आभूषण नहीं है, वो आभरण नहीं है, वो श्रृंगार नहीं है, अलंकार नहीं है, वो केवल एक विजय का प्रतीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जो माला का प्रयोग चलता है, माला चरणों में भी रखी जाती है। और माला वैसे भी जो अपन ने वहां देखी है गोमटेश्वर बाहुबली और धर्मस्थल में भी थी ना। हाँ, गले में, गले में डालने वाला प्रश्न है आपका। इसकी खोज हमें करनी है अभी। क्या है कि हमने बहुत इसमें रुचि नहीं ली, इन विषयों में ज़्यादा रुचि नहीं ली है। जो जो हमारे सामने आए और जो प्रश्न उठते रहे उनकी तो हमने खोज कर ली थी, लेकिन ये जो आपका प्रश्न है इसके ऊपर हम और ढूंढ कर निकालेंगे। पर परिग्रह की जो बात होती है ना, वो परिग्रह केवल बाह्य वस्तु को परिग्रह नहीं कहते जैन सिद्धांत में, वो अंदर का अभिप्राय भी साथ में आवश्यक होता है। और अभिप्राय चूंकि भगवान के अंदर मूर्छा का क्षय हो चुका है, वो मोहिनी कर्म को नष्ट कर चुके हैं, इसलिए अगर जैसे गुरुदत्त मुनि थे, अभी वड्डाराधना में भी कुछ कथाएं आ रही है, तो गुरुदत्त मुनि के ऊपर कपड़ा डाल करके उपसर्ग किया था किसी ने, तो वो वस्त्र उनके ऊपर था पर वो वस्त्रधारी नहीं थे, वो परिग्रही नहीं थे, ऐसा है। तो अब ये जो माला है ये कोई श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, क्योंकि कोई भी भक्त जो जानता है कि हमारे भगवान इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, वो भगवान को श्रृंगारित करेगा ही क्यों? विचारने की बात है, कौन ऐसा भक्त होगा जो जिनेंद्र भगवान को श्रृंगारित करना चाहेगा, क्योंकि वो श्रृंगार की भूमिका से बहुत ऊपर है। नहीं नहीं श्रृंगार की कोई वस्तु है इसका निर्णय पहले अपन शास्त्रों से करेंगे, फिर बाद में अपन उसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जो भी ये काम करता है उसके इंटेंशन में क्या है, ये अपने को देखना होगा। क्या वो उसको श्रृंगार की वस्तु के रूप में वहां पर स्थापित कर रहा है, ये देखना होगा। और पहले ये भी देखना होगा कि क्या ऐसा है क्या, माला का वर्णन कहीं देखना होगा अपने को, अभी चूंकि हमें थोड़ा स्मृति में नहीं आ पा रहा ठीक से, वरांग चरित्र में एक श्लोक देखा था हमने, हिंदी अनुवाद में उन्होंने लिखा था कि भगवान के गले में माला पहना ही थी, पर संस्कृत में हम देख रहे थे तो फिर संस्कृत में स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए जब तक शास्त्र का वो न मिल जाए, शास्त्र वचन न मिल जाए, तब तक हम सोचते हैं कि अभी अपन मौन रखते हैं, इसके बारे में और खोज करेंगे, फिर बाद में अपन निर्णय कर लेंगे। पर माल्य शब्द तो लिखा है पूजा के उपकरण में, तो वो माल्य किस रूप में होगा इस पर अपने को विचार करना है। अपना पूर्वाग्रह अपन बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आगम में अगर कोई भी बात लिखी होगी तो वो गलत नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। हम देखो अभी शायद राजवार्तिक में या अन्य ग्रंथों में और देख लेते हैं, श्लोक वार्तिक में भी देख लेते हैं। राजवार्तिक में तो ज्यों के त्यों वही शब्द है, गंध माल्य धूपादि आत्म परिधानाद्यर्थस्य। और अपने पहनने के जो कपड़े वगैरह हैं उनको भी बिना देखे शोधे अगर पहनते हैं तो फिर ये अतिचार लगता है आदान नाम का। फिर चटाई वगैरह जो बिछाते हैं उसको बिना देखे शोधे बिछाने पर वो अतिचार लगता है। फिर अपनी क्रियाओं में आदर न करना, अनुत्साह रखना, वो अनादर कहलाता है। और भूख के कारण कभी कभी याददाश्त थोड़ी वो हो जाती है, तो वो स्मृति का अनुपस्थान होना ये भी एक अतिचार है। श्लोक वार्तिक में देखते हैं, श्लोक वार्तिक में इसका खुलासा नहीं किया है, तत्वार्थ वृत्ति में देखते हैं। इसमें भी नहीं खोला, दूसरी तत्वार्थ वृत्ति में। अर्हत आचार्य पूजोपकरण से गंध पुष्प धूपादे है, वहां पर गंध माल्य धूपादे था, यहाँ गंध पुष्प धूपादे है, आत्म परिधान उप धान आदि वस्तुनश्च ग्रहणम आदानम इत्युच्यते। इसमें भी ये स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कैसे करना है। चरणों में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ
लेकिन बॉडी पर डालना,
हाँ जी हाँ, हाँ जी।
बहुत वर्षों के पहले तक रहते,
हाँ जी,
चरणों के मध्य में,
हाँ हाँ
कोई अदर अंगों पर नहीं डालते,
जी जी
Nowadays, what has happened is,
huh.
they put one flower here, one flower here, one flower here. That is becoming a bit ugly.
Oh.
What I feel.
Okay.
It is a bit ugly. Hmm. And this may develop into some other things else. A bhakti ke atirekh se ek kavach banayega. Bhagwan ko, moon ko kavach. एक कवच बनाएगा, उसको भी हम सहना करना पड़ेगा, इस तरह होगा। भगवान का जो सौंदर्य है वो सभी खो जाएगा।
ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदिष्ट मृष्टान्यनादरास्मरणे, ये अभी आने वाला है, एक रत्नकरण में ये भी अतिचार आने वाले हैं, जो अभी अपन ने इतने सारे पढ़े ना इतने ग्रंथों में, 1, 2, 3, 4, 5 पांच ग्रंथों में अपन ने ये सब पढ़ा, अतिचारों का वर्णन। हाँ ठीक है,
ठीक है, वो डालना भी समान।
हाँ जी,
तो हम कैसे पुष्प माला डालेंगे, ये प्रश्न उठता
है। नहीं नहीं, बहुत आपका प्रश्न तो हम सही मान रहे हैं, बस अब इसका समाधान अपने को ढूंढना है। कई समाधान ऐसे हैं जो अभी अपने को खोजने बाकी हैं, जितने हमारे पास है उतने समाधान तो हम दे देते हैं, जितने नहीं है तो हम कह देते हैं कि हमारे पास अभी नहीं है इसके समाधान। पांच ग्रंथों में तो नहीं मिला अभी अपने को, अब ये एक मुनि महाराज ने जो लिखा है इस विषय में, अमृतचंद आचार्य ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में आश्रव तत्व की व्याख्या में जिन प्रतिमा की पूजा के लिए रखे गए गंध माला और धूप की चोरी करना अशुभ नाम कर्म के आश्रव में गिनाया है। चरणानुयोग के कई ग्रंथों में पंचामृत अभिषेक फल फूल द्वारा भगवान परमेष्ठी की पूजा करना लिखा है, तब भी कई लोग इसका निषेध करते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने स्वतंत्र रूप से ग्रंथों की रचना की है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज द्वारा रचित जयोदय काव्य पृष्ठ 910 श्लोक 48 में भगवान के चरणों में केसर लगाने का एवं पृष्ठ 1111 श्लोक 68 में भगवान के चरणों में कमल पुष्प चढ़ाने का उल्लेख है। वो बात तो आ रही है, अभी जितना मिल रहा है वो अपन देखते जा रहे हैं। आगामी अतिचारों का विवरण अपन आगामी सत्र में देख लेंगे, आज इतना रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।